डॉक्टर डेविड एडिसिल्वा, इब्रानियों 17:4। इब्रानियों 3:01-4:13 अविश्वास के खतरे। 2024 डेविड डिसिल्वा और टेड हिल्डेब्रांट। इब्रानियों 3:01-4:13 का अगला मुख्य भाग मूसा और निर्गमन पीढ़ी पर लेखक के विचारों के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो मूसा के साथ मिस्र से बाहर गई थी और कैसे इन व्यक्तियों के उदाहरण यीशु पुत्र के बारे में हमारी सोच को सूचित करते हैं और हमारे विचार को उन लोगों के रूप में जो अब इस अस्थाई भौतिक क्षेत्र से दिव्य क्षेत्र में अपने स्वयं के एक नए निर्गमन में पुत्र का अनुसरण करते हैं। इन अध्यायों में हम एक विशिष्ट तर्कपूर्ण प्रवाह देख सकते हैं। 3:1-6 में लेखक अपना ध्यान यीशु की स्वर्गदूतों से तुलना से हटाकर यीशु की मूसा से तुलना करने पर केंद्रित करता है, और जैसा कि हम देखेंगे, यह लेखक द्वारा यीशु की तुलना प्रथम वाचा या पुरानी वाचा की मध्यस्थता में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ करने का एक समझदारी भरा दूसरा कदम है। 3:07-19 में लेखक जंगल की पीढ़ी या निर्गमन पीढ़ी की कहानी के इर्द गिर्द निर्मित एक लंबे उपदेश में प्रवेश करता है, जैसा कि पहले भजन 95 में याद किया गया है, लेकिन गिनती अध्याय 14 में और अधिक विस्तार से बताया गया है। लेखक ईश्वरीय प्रतिज्ञा और उसमें काम करने वाले मानवीय अविश्वास की गतिशीलता के लिए कहानी की जांच करता है, ताकि श्रोताओं को उनकी स्थिति में काम करने वाले समान गतिशीलता के बारे में चेतावनी दी जा सके। फिर 4:01-11 में उनसे आग्रह किया कि वे वही नुकसानदेह अंत आत्मविनाशकारी विकल्प न चुने जैसा कि जंगल की पीढ़ी ने कनान में प्रवेश करने की दहलीज पर किया था। अंत में लेखक इस खंड को अध्याय 4:12-13 में परमेश्वर के वचन की शक्ति के बारे में चेतावनी के एक संक्षिप्त शब्द के साथ समाप्त करता है, और इसलिए इस वचन का सही ढंग से जवाब देने के महत्व के बारे में बताता है। 3:01-2 में लेखक मसीह और मूसा की तुलना करना शुरू करता है। इसलिए पवित्र भाइयों और बहनों, एक स्वर्गीय बुलाहट के भागीदार हमारे स्वीकारोक्ति के प्रेरित और महायाजक अर्थात यीशु पर विचार करें, जो अपने नियुक्त करने वाले के प्रति वफादार है, जैसा कि मूसा अपने पूरे घर में था। जैसे ही लेखक इस खंड की शुरुआत करता है, वह सबसे पहले संबोधित करने वालों को रिश्तेदारी शब्द भाइयों या भाइयों और बहनों और पवित्रता शब्द पवित्र पवित्र भाइयों और बहनों से संबोधित करता है। ये दोनों ही पहली सदी में ईसाई पहचान के महत्वपूर्ण घटक हैं। हम आज भी अपने साथी ईसाइयों को भाई और बहन के रूप में बोलने के आदि हो सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें भाई या बहन के रूप में संबोधित कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमने इस पहचान के बारे में जो वास्तव में महत्वपूर्ण था, उसे खोया नहीं है, अर्थात एक दूसरे के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का स्तर, क्योंकि हम मसीह के रक्त से संबंधित हैं। अब हम एक दूसरे को वह प्यार, देखभाल, समर्थन, चिंता प्रदान करने जा रहे हैं, जो स्वाभाविक भाई बहन जब वे अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे होते हैं, एक दूसरे को प्रदान करते हैं। साथ ही पवित्र लेबल उन सामाजिक सीमाओं की एक सूक्ष्म याद दिलाता है, जो ईश्वर ने स्वयं दर्शकों के चारों ओर निर्धारित की हैं। मसीह के पास आने और उनकी ओर से मसीह की मृत्यु के शुद्धिकरण लाभों को प्राप्त करने के कारण उन्हें बाकी मानव जाति से अलग रखा गया है। वे एक अलग थलग लोग बन गए हैं, साथ ही एक नया रिश्तेदारी समूह भी बन गए हैं, जो इस यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे एक स्वर्गीय बुलावे के भागीदार भी हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे लेखक अपने उपदेश में लगातार सूक्ष्मता से पेश करता रहा है। वह श्रोताओं के बारे में 1:14 में उन लोगों के रूप में बात करता है जो उद्धार प्राप्त करने वाले हैं, और अध्याय 2:10 में उन बेटों और बेटियों के रूप में जो खुद महिमा की ओर ले जाए जा रहे हैं। वह श्रोताओं के सामने उस महान नेति को रखता है जो मसीह के साथ उनके जुड़ाव के कारण उनका इंतजार कर रही है, और उन्हें याद दिलाता है कि उस रिश्ते के कारण उनके लिए अधिक सम्मान संभव है जो मसीह के बिना कभी संभव नहीं होगा। अध्याय 3:1 के मुख्य खंड में लेखक उन्हें एक बार फिर यीशु पर विचार करने के लिए आग्रह करता है। लेखक यहाँ भी मंडली की आंखों के सामने यीशु को स्थापित करना जारी रखता है, उनके दृष्टिकोण को इस एक केंद्र बिंदु से भरता है क्योंकि वे अपनी स्थिति में उनके लिए खुले कार्यों के बारे में सोचते हैं। सूर्य को देखने से उनका वर्तमान क्षण के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। यदि वे अपनी दृष्टि को केवल अपनी वर्तमान परिस्थितियों से विचलित होने देते हैं, जो सबसे अच्छी स्थिति में नीरस और सबसे खराब स्थिति में अपमानजनक हैं, तो उनकी आंतरिक प्रेरणा की दिशा ईसाई प्रतिबद्धता से अलग हो जाएगी और उनके पड़ोसियों की नज़र में पुनर्वास की ओर पुनः स्थापित हो जाएगी। हालांकि यदि यीशु उनके दर्शन के क्षेत्र को भरते रहते हैं तो उनका ध्यान इस बात पर होगा कि यीशु ने उनके लिए क्या किया है, इस महान उपकारकर्ता के प्रति उनके दायित्व पर, यीशु के सम्मान पर और इसलिए उनके हर कार्य में यीशु के प्रति सम्मान पर। इस प्रकार यह रणनीति लेखक के अपने श्रोताओं की देहाती जरूरतों को संबोधित करने के साधनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। वह यहाँ यीशु को हमारे स्वीकारोक्ति के प्रेरित और महायाजक के रूप में बहुत ही विशिष्ट तरीके से पेश करता है। हम यीशु को एक प्रेरित के रूप में सोचने के आदि नहीं हैं। यीशु के पास प्रेरित हैं। तो फिर यीशु खुद एक प्रेरित, एक संदेशवाहक, एक दूत कैसे हो सकता है? लेकिन फिर हमें याद आता है कि इब्रानियों के लेखक को यीशु में बहुत दिलचस्पी है क्योंकि वह वही है जिसके जरिए परमेश्वर का अंतिम वचन दिया गया था। यह उपदेश के आरंभिक पैराग्राफ का मुद्दा था और अध्याय 2:1-4 में भी प्रारंभिक उपदेश था। यह लेखक के उस जोर के अनुरूप भी है जो सूर्य में परमेश्वर द्वारा बोले गए शब्दों का जवाब देने के महत्व पर है। बेशक यीशु एक महायाजक के रूप में एक ऐसा विषय है जिसे लेखक विस्तार से विकसित करेगा, पहले अध्याय 5 में और फिर अध्याय 7-10 में अधिक गहराई से। लेखक अध्याय 3:2 में आगे कहता है कि यीशु उद्धरण में उस व्यक्ति के प्रति वफादार था जिसने उसे नियुक्त किया था, जैसे कि मूसा परमेश्वर के सभी घरानों में वफादार था। इस आयत में लेखक संख्या 12 आयत 7 के शब्दों को पुनः संदर्भित कर रहा है और इस प्रकार उस पुराने पाठ को इस उपदेश में अब जो कह रहा है उसके साथ बातचीत में आमंत्रित कर रहा है। हालांकि उसने संख्या 12:07 से एक कीवर्ड को अलग रखा है, अर्थात सेवक। वह इसे कुछ ही आयतों में इस तुलना के मुख्य बिंदु के रूप में सामने लाएगा जो एक पुत्र के रूप में यीशु की श्रेष्ठता को एक सेवक के रूप में मूसा से दर्शाता है। गिनती अध्याय 12:6-7 मूसा की परमेश्वर तक अधिक सीधी पहुंच और परमेश्वर के मूसा के साथ अधिक प्रत्यक्ष संचार के बारे में बात करते हैं, जबकि अन्य भविष्यद्वक्ताओं के मामले में परमेश्वर केवल सपनों और दर्शनों में दयापूर्वक बात करता था। गिनती के संदर्भ में मूसा की प्रशंसा मेरे पूरे घर में विश्वासयोग्य या उसे सौंपे जाने के रूप में की गई है। यह फिर से तुलना का एक उपयुक्त बिंदु है क्योंकि जैसा कि लेखक ने धर्मोपदेश शुरू किया, पुत्र किसी भी भविष्यद्वक्ता की तुलना में अधिक विश्वसनीय और विश्वासयोग्य वचन का वाहक है, जिन्होंने परमेश्वर की योजना के केवल आंशिक संकेत दिए। इस तुलना का उद्देश्य किसी भी तरह से मूसा को नीचा दिखाना नहीं है। प्राचीन भाषणों में तुलना अक्सर भाषण के विषय को ऊपर उठाने के उद्देश्य से की जाती थी। एक वक्ता अपने स्वयं के प्रशंसा के विषय की तुलना करने के लिए महान व्यक्तियों को चुनता था और मूसा परंपरा में ईश्वर के वचन को बोलने के लिए एक माध्यम के रूप में प्रसिद्ध है। मूसा लोगों के लिए मध्यस्थ के रूप में भी प्रसिद्ध है और वह अक्सर एक सफल मध्यस्थ होता है यदि हम उन उदाहरणों को याद करें जिनमें मूसा ने मूल रूप से लोगों और ईश्वर के बीच खुद को डाल दिया, उनकी ओर से ईश्वर की दया की याचना की। ईश्वर ने पेंटाट्यूक में कई अवसरों पर मूसा द्वारा बोले गए वचन को भी पुष्ट किया। यह सब मिलकर उस प्रमुख बिंदु को पुष्ट करने का काम करता है जिसे लेखक बना रहा है, अर्थात ईश्वर के दूत के रूप में यीशु का अधिक महत्व है, उसके अपने संदेश पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और ईश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में यीशु का अधिक महत्व है। इसलिए आरंभिक भाग में यीशु को एक प्रेरित और एक महायाजक, एक संदेशवाहक और एक मध्यस्थ के रूप में दिखाया गया है। इस तुलना का आरंभिक बिंदु दोनों व्यक्तियों की परमेश्वर के प्रति वफादारी है। यीशु उस व्यक्ति के प्रति जिसने उसे दूत और महायाजक नियुक्त किया था और मूसा ने उसे अपनी क्षमता में नियुक्त किया था। जैसे जैसे सादृश्य विकसित होता है, हम उस विभेदन बिंदु को देखेंगे जिसे लेखक इस उदाहरण में यीशु की श्रेष्ठता दिखाने के लिए प्रस्तुत करता है। अर्थात घर के भीतर केवल एक नौकर के बजाय घर के ऊपर एक पुत्र के रूप में उसका श्रेष्ठ स्थान, और इस प्रकार यीशु का घर के अंतिम मुखिया अर्थात परमेश्वर के निकट स्थान। लेखक तीसरे पद में बेटे के लिए अधिक सम्मान के बारे में बात करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसा कि वह लिखता है, यह मूसा से भी अधिक सम्मान का पात्र है, क्योंकि घर बनाने वाले का घर से भी अधिक सम्मान है। हर घर की नींव किसी न किसी के द्वारा रखी जाती है, लेकिन जिसने सब कुछ पाया वह परमेश्वर है। हाँ, मूसा का सम्मान किया जाता है, लेकिन बेटे का सम्मान उससे भी अधिक किया जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए वह एक सादृश्य बनाता है जो हमें कुछ हद तक अजीब लग सकता है। यीशु मूसा के लिए एक निर्माता, एक घर और सभी सृष्टि के लिए परमेश्वर के समान है। यह सादृश्य संभवतः लेखक और श्रोताओं के लिए काम करता है, क्योंकि सृष्टि में पुत्र की भूमिका के बारे में उनके साझा विश्वास हैं। यीशु एक पुत्र के रूप में घर के निर्माण में भाग लिया, सामान्य रूप से निर्माण में नहीं, बल्कि हर युग और जगह से वफादार लोगों के समूह में, जिसके भीतर केवल मूसा ने सेवा की। इसलिए दिव्य पुत्र के रूप में उनके महान होने और सहनिर्माता के रूप में घर में उनकी बड़ी भूमिका के कारण पुत्र को अधिक सम्मान प्राप्त होता है। फिर जैसा कि लेखक आगे कहते हैं, एक ओर मूसा अपने पूरे घर में एक सेवक के रूप में उन बातों के गवाह के उद्देश्य से वफादार था जो बाद में कही जाएंगी, लेकिन मसीह अपने घर के प्रति एक पुत्र के रूप में वफादार था, जिसका घर हम हैं यदि हम साहस और अपनी आशा के घमंड को थामे रहें। गिनती 12:07 में वह शब्द है जिसका परिचय लेखक ने इस अनुच्छेद में पहले नहीं दिया है, वह शब्द है सेवक। गिनती में हम पढ़ते हैं, मेरे सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं है जो मेरे सारे घराने में विश्वासयोग्य है। लेखक इस बात को इस बिंदु पर टालना चाहता था ताकि घर में सेवक के रूप में मूसा और घर के ऊपर पुत्र के रूप में यीशु के बीच अंतर स्पष्ट हो सके। उस घर के वारिस के रूप में यीशु घराने के ऊपर एक पद पर है और इसलिए घराने के भीतर एक दास या नौकर से अधिक हैसियत रखता है। लेखक श्रोताओं को यह याद दिलाकर इसे पूरा करता है कि हम सब मिलकर इस घर का निर्माण करते हैं जिसे परमेश्वर ने बनाया है। ऐसा करके उसने श्रोताओं को उस सम्मान की याद दिलाई है जिसका वे यीशु के प्रति अपनी वफादारी के कारण आनंद लेते हैं, अर्थात परमेश्वर के घराने में गोद लिए जाने और इस प्रकार अपने वरिष्ठ भाई यीशु की महिमा और सम्मान में भागीदार होने के कारण। हालांकि लेखक इस सम्मान का आनंद लेना जारी रखने की शर्तों और इसके साथ जुड़ी आशा यानी महिमा की आशा का परिचय भी देता है। वह लिखता है कि अगर हम साहस और आशा के घमंड को थामे रहें तो हम उसका घर हैं। ब्रानियों के पत्र में साहस ग्रीक शब्द पारेसिया का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ हैं और इब्रानियों के लेखक ने अपने उपदेश के दौरान संभवतः उनमें से कई का उपयोग किया है। वह ईश्वर के प्रति साहस का आग्रह करता है, लेकिन पड़ोसियों के प्रति भी साहस का, न कि उनके द्वारा मसीह के प्रति अपनी निष्ठा या उनके साथ संबंध के बारे में चुप रहने या उनके द्वारा इस तरह से अधीनता में आने के लिए कि वे ईसाई समूह को छोड़ दें। पारेसिया एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर ग्रीक राजनीतिक प्रवचन में खुलकर बोलने या बोलने की स्वतंत्रता के बारे में बात करने के लिए किया जाता था, जिसका नागरिकों को शहर में आनंद मिलता था। यह वह बात थी जो तब दाव पर लगी थी जब एक तानाशाह ने एक शहर पर कब्जा कर लिया और अपनी इच्छा को लागू करने की कोशिश की। क्या नागरिक अपना परहेसिया बनाए रखेंगे और अपनी मूल स्वतंत्रता से तानाशाह से बात करेंगे, या फिर वे अधीनता में आ जाएंगे और तानाशाह जो चाहे वही कहेंगे ताकि वे अस्थाई सुख सुविधा का आनंद ले सकें? लेखक इसे उन अभिभाषकों की स्थिति पर लागू करेगा जिनके लिए समाज ने तानाशाह की भूमिका निभाई है। क्या वे समाज के उन प्रयासों को स्वीकार करेंगे जो उन्हें शर्मिंदा या धमकाने के लिए मसीह ने उनके लिए जो कुछ किया है और मसीह में उनकी आशा के बारे में उनकी साहसिक अभिव्यक्ति को कुचलने के लिए प्रेरित करेंगे? इस आयत में यूनानी शब्द भी आता है। यह शब्द सम्मान के दावे या शेखी बघारने का संकेत देता है जो श्रोताओं को उनके पड़ोसी द्वारा उनके सम्मान के बारे में विपरीत दावों के सामने फिर से याद दिलाता है कि यीशु के साथ उनके जुड़ाव ने वास्तव में उन्हें सम्मान का एक मूल्यवान दावा दिया है जिसे छोड़ना उनके लिए मूर्खता होगी। इब्रानियों 3:1-6 में यीशु और मूसा के बीच तुलना लेखक को स्वाभाविक रूप से इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि लोगों ने मूसा के माध्यम से परमेश्वर द्वारा कहे गए वचन पर कैसे प्रतिक्रिया दी, और इस प्रकार जंगल की पीढ़ी की विफलता को एक नकारात्मक उदाहरण के रूप में विकसित किया जिसका अपने स्वयं के अभिभाषकों को अपनी वर्तमान स्थिति में अनुकरण न करने के लिए सावधान रहना चाहिए। लेखक भजन 95 के माध्यम से उदाहरण और उपदेश दोनों को प्रस्तुत करता है। भजन का दूसरा भाग जंगल की पीढ़ी की विफलता को संदर्भित करता है और पहले से ही उनके उदाहरण का उपयोग एक प्रोत्साहन के आधार के रूप में करता है कि परमेश्वर जो कर रहा है उस पर ध्यान दें और अच्छी तरह से प्रतिक्रिया दें। और इसलिए लेखक लिखता है, इसलिए जैसा कि आज पवित्र आत्मा कहता है, यदि आप उसकी आवाज सुनते हैं तो अपने दिलों को कठोर न करें जैसे विद्रोह के समय, जैसे जंगल में परीक्षण के दिन जब आपके पूर्वजों ने मुझे परखा और उन्होंने 40 वर्षों तक मेरे कामों को देखा। इसलिए मैं उस पीढ़ी से नाराज था और मैंने कहा कि वे हमेशा अपने दिल में भटकते रहते हैं और उन्होंने मेरे तरीकों को नहीं जाना है, क्योंकि मैंने अपने क्रोध में शपथ ली थी कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर हम इब्रानियों के लेखक द्वारा भजन 95 के पाठ को प्रस्तुत करने के तरीके और हमारे अंग्रेजी बाइबल के पुराने नियम में भजन 95 को पढ़ने के तरीके की तुलना करें तो हमें कुछ मामूली अंतर नजर आ सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे बाइबल के अंग्रेजी अनुवादक पुराने नियम का सीधे हिब्रू पाठ से अनुवाद करते हैं, लेकिन इब्रानियों के लेखक ने भजन के पाठ को सेप्टुआजेंट में पाया है जो हिब्रू पुराने नियम का ग्रीक अनुवाद है, जिसका इस्तेमाल ग्रीक भाषी यहूदियों द्वारा दूसरी या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से किया जाता रहा है। यह वह ग्रीक अनुवाद है जो पूर्वी भूमध्य सागर में शुरुआती ईसाइयों के लिए प्राथमिक रूप बन गया, जो अपने पुराने नियम के शास्त्रों को भी जानते थे। हिब्रू पाठ में भजनकार वास्तव में 3 अलग अलग घटनाओं का उल्लेख करता है जिसमें निर्गमन की पीढ़ी परमेश्वर के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में लड़खड़ा गई। मरीबा की घटना, जहां भटकते हुए इब्रानियों ने पानी की कमी के कारण परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध शिकायत की, निर्गमन 17:1-7 में वर्णित है। फिर मस्सा की घटना, जहां उन्होंने पानी की कमी के बारे में दूसरी बार शिकायत की, जैसा कि हम संख्या 20:2-13 में पढ़ते हैं। फिर अंत में कनान में प्रवेश करने की दहलीज पर घटना, जहां लोगों ने भूमि पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने के बजाय विद्रोह कर दिया, जैसा कि संख्या 14 में वर्णित है। सेप्टुआजेंट संस्करण मूल रूप से पहली दो घटनाओं को क्षमा करें, लेकिन मूल रूप से पहली दो घटनाओं को स्थान के नाम मस्सा और मेरीबाह को सामान्य शब्दों कड़वाहट और परीक्षण के रूप में अनुवाद करके छिपा देता है। इस प्रकार अब पूरे अंश को संख्या 14 में वर्णित एकल प्रकरण के प्रतिबिंब के रूप में पढ़ा जा सकता है। संख्या 14 की वह कहानी संभवतः कई श्रोताओं को परिचित होगी। वादा किए गए देश में प्रवेश करने की दहलीज पर इब्रानियों के लोगों ने देश में जासूस भेजने का फैसला किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर वे परमेश्वर के निर्देशानुसार कनान पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें क्या करना होगा। वे 12 जनजातियों में से प्रत्येक से एक जासूस चुनते हैं और जब जासूस वापस लौटते हैं तो इनमें से 10 जासूस कहते हैं कि हम इस देश को किसी भी तरह से नहीं ले सकते। निवासी मजबूत हैं, उनके शहर अच्छी तरह से किलेबंद हैं, हम सफल नहीं होने जा रहे हैं। हालांकि दो जासूसों जोशुआ और कालेब ने कहा कि यह देश अच्छा है, यह लेने के लिए तैयार था और भगवान निश्चित रूप से भगवान के वादे के प्रति वफादार होंगे। लोगों ने बहुमत की रिपोर्ट पर विश्वास किया। उन्होंने भगवान पर उन्हें वहां मारने के लिए रेगिस्तान में लाने का आरोप लगाया और उन्होंने मूसा की जगह एक नए नेता को चुनने की योजना बनाना शुरू कर दिया जिसने उन्हें इस रास्ते पर ले जाया था और मिस्र वापस जाकर फिरौन के साथ किसी तरह की शांति वार्ता करने और अपने पुराने जीवन में लौटने के लिए। परमेश्वर ने इसे अविश्वास का एक स्पष्ट कार्य माना जो उसका अपमान करता है और यहां तक कि परमेश्वर पर बुरे इरादों का आरोप भी लगाता है। इसलिए परमेश्वर अपने क्रोध में शपथ लेता है कि यह पीढ़ी प्रवेश नहीं करेगी। उस पीढ़ी से केवल यहोशू और कालेब भी प्रवेश करेंगे, साथ ही उन विद्रोहियों की संतानें भी प्रवेश करेंगी जो वास्तव में उन अच्छी चीजों का स्वाद चखेंगे जिनका परमेश्वर ने वादा किया था। हम इन शब्दों को संख्या 14:30 में पढ़ सकते हैं और यह वही शपथ है जिसका उल्लेख भजन 95 की आयत 11 में विशेष रूप से किया गया है। इसलिए मैंने अपने क्रोध में शपथ खाकर कहा, वे मेरे विश्राम में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। अपने उपदेश पर लौटते हुए इब्रानियों के लेखक ने भजन 95 के पाठ के माध्यम से संख्या 14 की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कुछ आवश्यक और रणनीतिक तत्वों का परिचय दिया है। भजन संहिता का पाठ एक बार फिर इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर द्वारा कहे गए वचन पर ध्यान देना और उसके अनुसार चलना कितना महत्वपूर्ण है। आज यदि आप उसकी आवाज सुनते हैं तो अपने दिलों को कठोर न करें। उपदेश के श्रोताओं को सीधे तौर पर परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो उन्हें पुत्र में प्राप्त हुआ है, और यह उनके अपने दिलों में हलचल पैदा करता है जब वे उपदेश सुनते हैं बजाय इसके कि वे अपने पड़ोसी की स्वीकृति और सम्मान के लिए लौटने के लिए पवित्र आत्मा और जीवित मसीह के साथ अपने स्वयं के मुठभेड़ में भगवान से जो कुछ सुना उसके प्रति अपने दिलों को कठोर कर लें, जो मिस्र में लौटने के बराबर है। भजन भी एक प्राथमिक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे भगवान के वादों का जवाब नहीं देना चाहिए और खराब तरीके से जवाब देना इतना मूर्खतापूर्ण विकल्प क्यों है, क्योंकि जंगल की पीढ़ी निश्चित रूप से उस लाभ को खो दिया जो भगवान ने उन्हें देने की योजना बनाई थी और अपने स्वयं के सबसे बुरे डर को पूरा करने के लिए समाप्त हो गई, क्योंकि पूरी पीढ़ी वास्तव में अगले 40 वर्षों में रेगिस्तान में मर गई। भजन 95 का पाठ करने के बाद लेखक तुरंत अपने स्वयं के श्रोताओं की स्थिति पर निर्गमन पीढ़ी के विद्रोह संख्या 14 के प्रकरण को और अधिक बारीकी से देखने और लागू करने के लिए आगे बढ़ता है। हे भाइयों, चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम में ऐसा दुष्ट मन हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। पर जब तक आज का दिन है तब तक हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि यदि हम अपनी आशा की पहली मात्रा को अंत तक थामे रहें तो मसीह के सहभागी हो गए हैं। जैसा कि यह कहता है, आज यदि तुम उसकी आवाज सुनते हो तो विद्रोह के समय की तरह अपने दिलों को कठोर मत बना। जैसे ही लेखक इस उपदेश को शुरू करता है, वह श्रोताओं को विश्वास में एक दूसरे की देखभाल करने के महत्व की याद दिलाता है। वह उन सभी को एक बहुवचन आदेश के साथ बताता है, तुम सब सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम में से कोई भी अविश्वास के दुष्ट हृदय का अनुभव करे। एक की दृढ़ता अनेक लोगों का क्षेत्राधिकार है। यह एक सतत रणनीति का हिस्सा है जिसे लेखक मंडली को शिष्यत्व में व्यक्तिगत दृढ़ता के लिए समर्थन का एक मजबूत सामाजिक आधार बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शित करता है। वह उन्हें फिर से भाई और बहन कहता है, उन्हें याद दिलाता है कि अब उनका प्राथमिक जुड़ाव, उनका प्राथमिक परिवार एक दूसरे में पाया जाना है, वह परिवार जिसे परमेश्वर ने पुत्र के चारों ओर इकट्ठा किया है। वह उन्हें अविश्वास के दुष्ट हृदय के खतरे के प्रति आगाह करता है जो जीवित परमेश्वर से दूर जाने में प्रकट होता है। ऐसा करते हुए लेखक एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नैतिक विषय पर प्रकाश डालता है जो वास्तव में हमारे अंदर सद्गुण की कमी है जो दूसरे के सद्गुण को पहचानने में विफल रहता है। परमेश्वर की आवश्यक विश्वसनीयता को पहचानने में विफल होना परमेश्वर पर निर्णय नहीं है, यह खुद पर और हमारी नैतिक विफलता पर एक निर्णय है। इस प्रकार ईश्वर में अविश्वास का हृदय दुष्टता का हृदय है, दुष्टता का हृदय है। लेखक उन्हें चेतावनी देता है कि वे प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें, फिर से व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के सामाजिक सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर जोर देते हैं। और वह यहाँ भजन से एक और शब्द लाता है, जब तक इसे आज कहा जाता है। यह भजन उद्धरण का प्रारंभिक बिंदु था, आज यदि आप उसकी आवाज सुनते हैं तो अपने दिलों को कठोर न करें। हालांकि जिस तरह से लेखक इसका उपयोग करता है, जब तक इसे आज कहा जाता है, लेखक सूक्ष्म रूप से श्रोताओं को ईसाई सुसमाचार के साथ आने वाली युगांतिक अपेक्षाओं की याद दिलाता है। आज हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए बेहतर होगा कि इस दिन का सबसे अच्छा उपयोग अंतिम दिन की तैयारी के लिए किया जाए, वह दिन जो और भी करीब आ रहा है, मसीह की वापसी का दिन और उसके सामने जवाबदेही का दिन। इस पाप का संचालन क्या है जो सुनने वालों को धोखा देने, सुनने वालों को कठोर बनाने की धमकी देता है? उनके विशेष परिवेश में पाप वह आवेग या वह आवाज है जो उन्हें परमेश्वर के वादों से दूर खींचती है और दुनिया जो दे सकती है उसकी ओर ले जाती है। यह परमेश्वर के प्रति निष्ठा, पुत्र के प्रति कृतज्ञता की कीमत चुकाना बंद करने का आवेग है, क्योंकि इस जीवन द्वारा प्रदान की जाने वाली अच्छी चीजों से खुद को संतुष्ट करने की इच्छा है। खास तौर पर उनके मामले में अपने पड़ोसियों का एक बार फिर सम्मान और आदर तथा उन सामाजिक नेटवर्क को फिर से स्थापित करने से मिलने वाले लाभ। यह लेखक के लिए उन आवेगों को रंग देने का एक रणनीतिक तरीका है। यह दो समान रूप से संभावित विकल्पों, दो समान रूप से मूल्यवान विकल्पों का वजन नहीं कर रहा है। यह हमारे पड़ोसियों या हमारे परिवार के सदस्यों की बातों को ध्यान से सुनना नहीं है जो अब हमसे अलग हो चुके हैं। ईसाई समूह से अलग होने का आवेग वास्तव में हमारे भीतर पाप की धोखेबाजी का काम है। पाप की यह शक्ति हम पर अपना मोहक जादू चलाने के लिए जो भी आवाजें इस्तेमाल करती हैं। लेखक आगे कहता है कि हम मसीह के भागीदार बन गए हैं यदि हम अंत तक दृढ़ता से उस सार के पहले भाग को थामे रहें जिसकी हम आशा कर रहे हैं। 3:14 में यह कथन तुरंत वही याद दिलाता है जो लेखक ने 3:06 में कहा था। हम उसका घर हैं यदि हम अपने साहस और आशा के घमंड को थामे रहें। मसीह के साथ सहोत्तराधिकारियों के रूप में, पुत्र के भागीदार के रूप में जो स्थिति प्राप्त होती है वह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शर्तें होती हैं। यह ईसाई यात्रा की शुरुआत नहीं है जो ईश्वर के पुरस्कार को बताती है, बल्कि यात्रा में दृढ़ता और यात्रा के अंत तक पहुंचना ही है जो व्यक्ति को ईश्वर के पुरस्कार में प्रवेश करने की अनुमति देता है। यह कुछ ऐसा है जिसे लेखक श्रोताओं पर जोरदार तरीके से प्रभावित करना चाहता है। यदि वे वादा किए गए उद्धार यानी ईश्वर की शाश्वत मातृभूमि में प्रवेश पाने की आशा रखते हैं तो उन्हें चलते रहना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। 3:16-19 में लेखक ने प्रश्नों और उत्तरों की एक श्रृंखला तैयार की है जो संख्या 14 में जंगल की पीढ़ी की कहानी के कुछ विवरणों को उजागर करते हैं। वे कौन हैं जिन्होंने सुनकर विद्रोह किया? क्या वे सभी लोग नहीं थे जो मूसा के साथ मिस्र से निकले थे? वे कौन हैं जिनसे परमेश्वर 40 वर्षों तक क्रोधित रहा? क्या वे उन लोगों से नहीं थे जिन्होंने पाप किया, जिनके शरीर जंगल में गिरे? किसके बारे में उसने शपथ ली कि वे उसके विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे सिवाय उनके जो अवज्ञाकारी थे? और हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर पाए। लेखक ने उस संबंध को मजबूत करने के लिए संख्या 14 की कहानी से भाषा को बुना है। ऐसा करके उसने जंगल की पीढ़ी में दो बड़ी कमियों को उजागर किया है जिसके बारे में उसे उम्मीद है कि वह उसकी मंडली में भी प्रकट नहीं होगी। पहली है अवज्ञा। प्रभु ने वास्तव में लोगों को देश में जाने की आज्ञा दी थी, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने पर प्रतिरोध का सामना करने के डर से अवज्ञा की। दूसरा है अविश्वास। जैसा कि परमेश्वर ने संख्या 14:11 में शिकायत की है, ये लोग कब तक मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे? भरोसा और अविश्वास ऐसे शब्द हैं जो अक्सर संरक्षक ग्राहक संबंधों के बारे में चर्चा के संदर्भ में आते हैं। एक ग्राहक को अपने संरक्षक पर भरोसा और विश्वास होना चाहिए ताकि वह आवश्यक सहायता प्रदान कर सके। एक संरक्षक को अपने ग्राहकों पर भरोसा करना चाहिए कि वह उस रिश्ते के संदर्भ में जिस तरह से व्यवहार करेगा उससे उस संरक्षक का अपमान नहीं होगा। लेखक इन दो चीजों को श्रोताओं के लिए प्राथमिक बुराइयों के रूप में उजागर करता है जिन्हें अपनी स्थिति में बचना चाहिए। उन्हें परमेश्वर द्वारा दिए गए वादों पर भरोसा करने में विफल नहीं होना चाहिए और उन्हें उन्हीं वादों के अनुसार चलने के लिए आज्ञा पालन करने में विफल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार लेखक निर्गमन और कनान में प्रवेश को दर्शकों और उनकी स्थिति की कथा के लिए एक रूपरेखा के रूप में उपयोग करता है। वह चाहता है कि वे खुद को उस भूमि में प्रवेश करने की उसी दहलीज पर देखें जिसका वादा उनसे किया गया था। वह उनकी स्थिति के लिए एक सादृश्य प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त पवित्र शास्त्रीय कहानी के रूप में संख्या 14 का उपयोग करता है। क्या वे ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश करने की दहलीज पर ही चूक जाएंगे या वे साहसपूर्वक आगे बढ़ेंगे? क्या वे अवज्ञा और अविश्वास की ओर जाने वाले आवेगों पर काबू पा लेंगे और इस तरह उस पार जा सकेंगे जहां उनके आध्यात्मिक पूर्वज विफल हो गए थे? इब्रानियों के 4 में उपदेशक अभिभाषकों को यह दिखाना जारी रखता है कि वे जंगल की पीढ़ी के समान स्थिति में कैसे खड़े हैं। वह उनकी भावनाओं से अपील के साथ शुरू करता है, उन्हें वास्तव में डरने के लिए आमंत्रित करता है। तो आइए हम डरें, कहीं ऐसा न हो कि जब तक उसके विश्राम में प्रवेश करने का वादा बना रहे तब तक आप में से कोई व्यक्ति कमतर होने के बारे में न सोचे। भावनाओं के प्रति ऐसी अपील जैसे कि यहाँ डर के प्रति अपील अनुनय की प्राचीन कला के सामान्य तत्व थे। ये प्राचीन भाषण और उपदेश केवल तर्क वितर्क के लिए दिमागी तार्किक प्रयास नहीं थे बल्कि श्रोताओं के पूरे व्यक्तित्व को शामिल करना था जिसमें उनकी भावनाएं भी शामिल थीं। जैसा कि अरस्तु ने पहचाना और बयानबाजी पर अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखा, लोग इस बात के आधार पर अलग अलग निर्णय लेते हैं कि वे उस समय किस भावनात्मक स्थिति में हैं। लेखक चाहता है कि उसके श्रोता अपने पड़ोसियों या अपनी परिस्थितियों से न डरें या यीशु के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें अभी भी क्या सहना पड़ सकता है। वह नहीं चाहता कि वे परमेश्वर द्वारा उनके लिए रखी गई चीजों को प्राप्त करने में विफल होने से डरें, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने सर्वशक्तिमान के साथ उस रिश्ते से विमुख होने का फैसला किया। यहाँ परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का वादा लेखक के लिए कनान की भूमि में प्रवेश करने और उसे अपने अधिकार में लेने के वादे से बिल्कुल अलग है। लेखक इसे अध्याय 4 के खुलने के साथ प्रदर्शित करेगा। यहाँ यह कहना पर्याप्त है कि लेखक अनिवार्य रूप से भजन 95 पद 11 की शपथ को और मैंने अपने क्रोध में शपथ ली कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे कुछ अलग संदर्भित करता है, हालांकि यह संख्या 14:30 की शपथ से जुड़ा हुआ है, जहां परमेश्वर ने कहा था, तुम में से कोई भी उस देश में नहीं आएगा जिसमें मैंने तुम्हें बसाने की शपथ ली है, सिवाय कालेब और यहोशू के। संख्या 14 में शपथ विशेष रूप से कनान को संदर्भित करती है, लेकिन इब्रानियों के लेखक भजन 95 पद 11 की शपथ को वादा किए गए एक अलग देश, दृश्यमान स्वर्ग से परे स्वर्ग में परमेश्वर के अपने निवास की भूमि को संदर्भित करते हैं। लेखक श्रोता की स्थिति और जंगल की पीढ़ी के बीच समानताओं को विकसित करना जारी रखता है, क्योंकि लेखक लिखना जारी रखता है क्योंकि हमें भी उनके जैसे ही अच्छी खबर मिली थी, लेकिन रिपोर्ट के शब्द ने उन्हें लाभ नहीं पहुंचाया क्योंकि वे उन लोगों के साथ विश्वास से नहीं जुड़े थे जिन्होंने सुनाया, जिन्होंने ध्यान दिया। लेखक संख्या 14 की कहानी के तत्वों को याद करना जारी रखता है, विशेष रूप से यहोशू और कालेब की प्रतिज्ञा की भूमि के बारे में अच्छी रिपोर्ट के बारे में प्राचीन इब्रानियों के बीच अविश्वास। चूंकि जंगल की पीढ़ी का बड़ा हिस्सा उन लोगों के साथ भरोसा करने में असमर्थ था जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने और उसका पालन करने के लिए तैयार थे, अर्थात यहोशू और कालेब, वे उस गंतव्य से चूक गए जो परमेश्वर ने उनके लिए निर्धारित किया था। श्रोता बेशक पहचान लेंगे कि उनके पास जो अच्छी खबर आई है वह मसीह के बारे में अच्छी खबर है, सुसमाचार। लेखक ने यहाँ जो चुनौती पेश की है वह एक अंतर्निहित चुनौती है। हमें जो अच्छी खबर मिली है उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या यह भरोसे के साथ मिलेगी, और इसलिए क्या यह हमें इस अच्छी खबर या इस अच्छे वचन के जवाब में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी? लेखक श्रोताओं के पास खुद को ऐसे लोगों के रूप में पहचानने के लिए जाता है जो वास्तव में अगले पद में भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे। हम जो विश्वास करते हैं वे ही विश्राम में प्रवेश कर रहे हैं। वह चाहता है कि सुनने वाले खुद को उस वर्णन में देखें। हम जो विश्वास करते हैं, जो भरोसा दिखाते हैं, ताकि वे खुद को पूरी तरह से निवेश करना जारी रखें, जैसे कि मसीह के संबंध में उन्होंने जो वादे सुने हैं वे पूरी तरह से विश्वसनीय हैं और उन पर लाभप्रद रूप से कार्य किया जा सकता है। जैसे जैसे उपदेश आगे बढ़ता है, लेखक इस सवाल का जवाब देने के लिए शास्त्र के आधार पर कुछ हद तक जटिल तर्क में प्रवेश करता है, परमेश्वर का विश्राम क्या है और हम कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि यह विश्राम, विश्राम में प्रवेश करने का यह वादा अभी भी हमारे सामने है। लेखक अपनी व्याख्या जारी रखता है। जैसा कि उसने कहा, जैसा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ ली थी, वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे, भले ही उसके कार्य दुनिया की नींव से अस्तित्व में आए हों। भजन 95 परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने की बात करता है, जो हमारे उपदेशक को उत्पत्ति 2:2 पर ले जाता है, क्योंकि वह सातवें दिन के बारे में कहीं कहता है, और परमेश्वर ने अपने सभी कार्यों से सातवें दिन विश्राम किया। हम यहाँ एक रब्बीनिक या वास्तव में एक प्रीरब्बीनिक यहूदी व्याख्यात्मक रणनीति को काम करते हुए देखते हैं, जिसके द्वारा एक आयत में एक कीवर्ड व्याख्याकार को दूसरी आयत में उसी कीवर्ड तक ले जाता है। यहाँ वह कीवर्ड विश्राम है। फिर इन दो आयतों का उपयोग एक दूसरे की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। लेखक ने इन दोनों ग्रंथों के एक साथ संचालन से जो निहितार्थ निकाला है वह यह है कि मनुष्य को न केवल कनान के भौगोलिक क्षेत्र में आमंत्रित किया जाता है बल्कि परमेश्वर के विश्राम के स्थान में भी आमंत्रित किया जाता है, वह स्थान जहां परमेश्वर ने सृष्टि के बाद विश्राम किया था, वह स्थान जो सृष्टि से परे के क्षेत्र में स्थित है। निर्गमन की पीढ़ी को उनके अविश्वास और अवज्ञा के कारण इससे रोक दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने भजन पाठ के माध्यम से श्रोताओं की एक नई पीढ़ी को निमंत्रण दिया, क्योंकि भजन इस नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करता है कि वे आत्मा जो कह रही है उसके प्रति अपने हृदय को कठोर न करें और इस तरह निर्गमन की पीढ़ी के भाग्य से बचें। इसलिए हमारे लेखक ने निष्कर्ष निकाला है कि कुछ लोगों के लिए इस विश्राम में प्रवेश करना बाकी है। लेखक शास्त्र की व्याख्या कर रहा है जो शास्त्र के कथनों के कालक्रम पर निर्भर करता है। तथ्य यह है कि भजनकार, जिसे इब्रानियों के लेखक ने स्वाभाविक रूप से राजा दाऊद के साथ जोड़ा है, ने इब्रानियों के ऐतिहासिक लोगों के कनान में प्रवेश करने के सदियों बाद परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के वादे के बारे में कुछ कहा। लेखक के लिए यह संकेत देता है कि विश्राम का एक बहुत बड़ा स्थान है, उस छोटे से भौगोलिक भूखंड से परे वादा किया गया स्थान जो ऐतिहासिक इसराइल की चिंता थी। लेखक तब से आगे बढ़ता है, इसलिए कुछ लोगों के लिए इस विश्राम में प्रवेश करना बाकी है और पहले वाले जो वास्तव में सुसमाचार के प्रचार में थे अवज्ञा के कारण प्रवेश नहीं कर पाए। फिर से परमेश्वर एक निश्चित दिन स्थापित करता है। आज जैसा कि दाऊद ने कहा, इतने लंबे समय के बाद जैसा कि उसने कहा, आज यदि तुम उसकी आवाज सुनते हो तो अपने दिलों को कठोर मत करो। यदि यहोशू ने उन्हें विश्राम दिया होता तो परमेश्वर इतने दिनों के बाद दूसरे विश्राम के बारे में नहीं बोलता। ये आयतें विपरीत तर्क देती हैं। यदि यहोशू ने वास्तव में लोगों को कनान में ले जाकर उन्हें परमेश्वर का वादा किया हुआ विश्राम दिया था तो फिर भजनकार द्वारा परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के बारे में बात करने का क्या मतलब होगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं और अपने हृदय को कठोर नहीं करते हैं, इसलिए लेखक इब्रानियों 4:09 में निष्कर्ष निकालता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सप्त का विश्राम शेष है। लेखक का मानना है कि उसने इस तथ्य को स्थापित कर दिया है कि भविष्य का विश्राम अभी भी विश्वासियों की प्रतीक्षा कर रहा है और अब वह इसे सप्त का विश्राम कहता है जो परमेश्वर के उस राज्य के साथ इस भविष्य के विश्राम की अपनी पहचान को ध्यान में रखते हुए है जहां परमेश्वर ने सृष्टि के अंत में अपने स्वयं के कार्यों से विश्राम किया था। लेखक इस भाग को समाप्त करता है क्योंकि जो उसके विश्राम में प्रवेश करता है वह भी अपने सभी कार्यों से विश्राम करता है, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने अपने सभी कार्यों से विश्राम किया था। अब इस आयत को आम तौर पर परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में एक कथन के रूप में पढ़ा गया है, लेकिन यह विचार करने योग्य है कि लेखक के मन में एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति है जो परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर चुका है, अर्थात यीशु एकमात्र व्यक्ति जो स्वर्ग से परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आरोहण के कारण परमेश्वर के विश्राम के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। इस यीशु ने भी वास्तव में अपने स्वयं के कार्यों से विश्राम किया है, जैसा कि लेखक अध्याय 10:11-13 में समझाएगा। हर पुजारी प्रतिदिन खड़ा होकर सेवा करता है और बार बार वही बलिदान चढ़ाता है, लेकिन यह यीशु हमेशा के लिए पापों के लिए एक बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठ गया और शेष समय तक प्रतीक्षा करता रहा जब तक कि उसके शत्रु उसके पैरों के नीचे एक पायदान के रूप में स्थापित न हो जाए। मसीह का पुजारी कार्य पूरा हो चुका है और इसलिए वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठने में सक्षम है, बजाय इसके कि वह उन याजकों की तरह खड़ा रहे जिनका कार्य अधूरा है। इब्रानियों 3:07-4:11 में जिस विश्राम की बात की गई है उसे दृश्यमान भौतिक दुनिया से संबंधित किसी भी चीज से नहीं पहचाना जाना चाहिए। यह वह स्थान है जहां परमेश्वर रहता है जहां यीशु हमारे लिए अग्रदूत के रूप में गया है और जहां हम भी सृजित अस्थाई क्षेत्र के निष्कासन में प्रवेश करेंगे। यह वह आशा है जो लेखक अपने श्रोताओं के सामने रखता है, उनसे जंगल की पीढ़ी की गलतियों को न दोहराने का आग्रह करता है। 4:11-13 में लेखक अब इस उपदेश के दूसरे प्रमुख खंड को समाप्त करता है जो 3:01 में शुरू हुआ था, एक खंड जिसे लेखक द्वारा मूसा और निर्गमन पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित करके सुसंगतता दी गई है, जो कि वास्तव में परमेश्वर के वचन और वादे का जवाब नहीं देने के लिए मॉडल के रूप में है। इस अंतिम अपील में लेखक लिखते हैं, इसलिए हमें उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि आप में से कोई भी अवज्ञा के उसी पैटर्न से गिरता हुआ न दिखे। इस प्रकार लेखक श्रोताओं के केंद्र बिंदु को फिर से स्थापित कर रहा है कि उन्हें क्या हासिल करना है, इस आधार पर कि कैसे संख्या 14 की कहानी ने उन्हें संबोधित व्यक्ति की अपनी स्थिति को देखने के लिए एक व्याख्यात्मक रूपरेखा दी है। लेखक चाहता है कि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को सबसे बढ़कर ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश करने और इस अस्थाई भौतिक सृष्टि से दहलीज पार करने पर केंद्रित करें, जिसका विनाश होना तय है ईश्वर की उपस्थिति के स्थाई क्षेत्र में। लेखक इसे इस कारण के रूप में प्रस्तुत करता है कि उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की आवश्यकता है और अविश्वास और अवज्ञा की उन कमियों से सावधान रहना चाहिए जो जंगल की पीढ़ी की अपनी भौगोलिक सीमा को पार करके कनान के वादा किए गए देश में जाने की क्षमता में बाधा डालती हैं। उनकी अवज्ञा का पैटर्न अनुकरणीय नहीं होना चाहिए। लेखक हमें एक बहुवचन प्रेरक उपवाक्य देकर हमें हर संभव प्रयास करने की अनुमति देता है। और फिर एक उद्देश्य खंड में एकवचन क्रिया के साथ एकवचन विषय की ओर मुड़ना ताकि आप में से कोई भी फिर से उस निवेश पर जोर न दे जो मसीह के पूरे शरीर द्वारा आवश्यक है यदि उस शरीर में प्रत्येक व्यक्ति अंत तक दृढ़ रहना चाहता है। हमें इस उपदेश में बार बार एक दूसरे पर नजर रखने और सावधान रहने के लिए कहा जाता है। हम इस बिंदु पर इब्रानियों से छंदों की एक जोड़ी पर आते हैं जो पुस्तक में सबसे प्रसिद्ध में से एक हो सकता है। मैं अपने पालन पोषण में धर्मशास्त्र को याद रखने के लिए बहुत अधिक समर्पित नहीं था, लेकिन रविवार स्कूल में मुझे याद करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने वाले कुछ छंदों में से एक वास्तव में इब्रानियों 4:12-13 था, जिसे मैंने हमेशा परमेश्वर के वचन के बारे में सामान्य रूप से कुछ के रूप में लिया था, सामान्य रूप से शास्त्र के बारे में। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है और हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, जो आत्मा और आत्मा को, गांठ और गूदे को अलग करके हृदय की इच्छाओं और विचारों को जांचता है, और कोई भी प्राणी उसके सामने छिपा नहीं है बल्कि सभी नंगे हैं और उनके गले उसके सामने खुले हैं, जिससे हमारा लेखा है। ये प्रसिद्ध आयते लेखक द्वारा अध्याय 4:11 में घोषित मानसिकता और कार्यवाही के तरीके को अपनाने के लिए एक तर्क के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। आइए हम उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए हर संभव प्रयास करें, ऐसा न हो कि आप में से कोई भी अवज्ञा के उसी पैटर्न में पढ़कर चूक जाए। परमेश्वर के वचन की शक्ति के बारे में इन आयतों द्वारा चूकने के खतरे को बढ़ाया गया है, और ये आयतें वास्तव में मेरे संडे स्कूल के शिक्षकों द्वारा मुझे बताए गए विश्वास से कहीं अधिक खतरनाक हैं जब मैंने उन्हें याद किया था। इस बिंदु तक धर्मोपदेश में परमेश्वर का वचन विषयगत रहा है। धर्मोपदेश के आरंभिक 4 में, फिर से अध्याय 2:1-4 में धर्मोपदेश की आरंभिक चेतावनी में, और फिर भजन 95:7 के उद्धरण में इब्रानियों 3:7 में, और फिर 3:7-4:7 में बार बार इस पर जोर दिया गया है। परमेश्वर के वचन का उल्लेख हमेशा उस वचन पर उचित ध्यान और प्रतिक्रिया देने में विफल होने के खतरे से जुड़ा होता है। इब्रानियों 4:12-13 इसी पैटर्न में आते हैं। यह 4:01 में श्रोताओं से की गई अपील को रेखांकित करता है कि वे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अपने हृदय को कठोर करने से डरें। परमेश्वर द्वारा दी गई सहायता और परमेश्वर से अभी प्राप्त होने वाले वादों के प्रति कृतज्ञता पूर्वक आज्ञाकारिता के साथ प्रतिक्रिया न करें। यहाँ विशेष रूप से 4:13 में जो छवि शामिल की गई है वह एक ऐसे प्रतिवादी की है जिसे एक न्यायाधीश के सामने लाया जाता है जिसकी आंखें आत्मा तक पहुंच सकती हैं, और इसलिए इस प्रतिवादी का अपराध। इस प्रकार ईश्वर की सर्वभेदी जांच के समक्ष अभिभाषक की भेद्यता उनके ध्यान में लाई जाती है। इसके अलावा मूल पाठ में ग्रीक कृदंत, जिसका आमतौर पर सरल अनुवाद किया जाता है, वह नंगा या उजागर होता है, वास्तव में उस अपराधी को संदर्भित करता है जिसका गला जल्लाद के ब्लेड के सामने खुला होता है। जो लोग ग्रीक जानते हैं वे उस ग्रीक कृदंत में अधिकांश शब्द त्रेकिया देख सकते हैं। लेखक ने संबोधित लोगों को ईश्वर के सामने नग्न अवस्था में खड़ा किया है, उनके गले का गला दबा दिया है, और वे उस वचन के प्रहार की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो किसी भी दोधारी तलवार से भी अधिक तीखा है, ताकि वह अपने इस तर्क को पुष्ट कर सके कि ईश्वर के प्रति अविश्वास और अवज्ञा वास्तव में श्रोताओं के सामने सबसे बड़ा खतरा है, न कि उनके पड़ोसी द्वारा अस्वीकार किए जाने का खतरा, जिसने उनमें से कुछ को पहले ही यह विश्वास दिला दिया है कि ईसाई समूह के प्रति प्रतिबद्धता से पीछे हटना लाभदायक है। इब्रानियों 3:01-4:13 लेखक की बयानबाजी की रणनीति में कई महत्वपूर्ण कदम पूरे करता है, ताकि श्रोताओं को उस निष्ठा की प्रतिक्रिया के करीब लाया जा सके जिसे वह उनके बीच में देखना चाहता है। एक बात के लिए उसने इस पूरे खंड में वाक्यांश मेरे विश्राम में प्रवेश करना या ईश्वर के विश्राम में प्रवेश करना को बार बार दोहराया है, ताकि श्रोताओं पर यह प्रभाव डाला जा सके कि यह ईश्वरीय क्षेत्र और उनकी शाश्वत विरासत की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है, जिस पर उनका पूरा ध्यान होना चाहिए। तथ्य यह है कि इस खंड में यह वाक्यांश 8 से कम नहीं दोहराया गया है। यह इस बात का शाब्दिक प्रतिनिधित्व है कि उन्हें खुद को परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के लिए कितना व्यस्त रखना है, और यह सुनिश्चित करना है कि वे उस प्रयास में विफल न हों। इस अंश ने फिर से श्रोताओं के लिए उनके वर्तमान क्षण में अवसर और खतरे को बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। अवसर परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के करीब जाने का है। खतरा यह है कि वे फिर से ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां उन्हें अपने अविश्वास और अवज्ञा के कारण ईश्वर का सामना न्यायाधीश के रूप में करना पड़ेगा। लेखक का इरादा दर्शकों की ओर से अन्य संभावित पहचानों को बदलने के लिए अवसरों और खतरों को ध्यान से रखना है जिनका वे पीछा कर सकते हैं, और खतरों से बचना चाहिए, विशेष रूप से मंडली के कुछ सदस्य जिन्होंने पहले से ही ईसाई समुदाय के साथ पूजा करने के लिए बाहर आना बंद कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से पहचान लिया है कि इस समय का अवसर हमारे पड़ोसियों के समाज में अपना स्थान फिर से हासिल करना है, और जिस खतरे से बचना है वह है हमारे शहर के बीच में पनपे इस विदेशी अंधविश्वास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के कारण हमारे प्राकृतिक जीवन के बाकी हिस्सों को फेंक देना। जिस हद तक श्रोता लेखक द्वारा वर्तमान समय की वास्तविक चुनौतियों के पुनर्निर्धारण को स्वीकार करते हैं, वे ईश्वर और मसीह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, ईसाई समूह, उसकी गवाही और उसके अभ्यास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार जीवन जीते रहेंगे या फिर जीवन जीने लगेंगे। इब्रानियों का यह भाग हमारी पीढ़ी तक हर पीढ़ी के ईसाइयों को चुनौती देता रहता है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक काठिन्य के खतरों को उजागर करता है, ईश्वर के वचन के प्रति हृदय का कठोर होना जिसके विरुद्ध लेखक चेतावनी देता है। यह कठोरता कई तरीकों से हो सकती है। सबसे आम और कपटी में से एक यह है कि जब हम मसीह के पास आने के अपने शुरुआती उत्साह के बाद अपने आसपास की आवाजों को, चाहे वह हमारे परिवार की हो, हमारे दोस्तों की हो, हमारे सहयोगियों की हो, यहाँ तक कि विज्ञापनों और राजनीतिक प्रचार की आवाजों जैसी अवैयक्तिक आवाजों को भी ईश्वर और ईश्वर के साथ जीवन के लिए हमारे जुनून को इस जीवन की चीजों को प्राप्त करने और उनका आनंद लेने की नई रुचि से बदलने देते हैं, जो अपने आप में बुरी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन जब तक वे हमें ईश्वर की बात मानने और उनका जवाब देने से विचलित करती हैं, तब तक वे एक बहुत बड़ा खतरा हैं। और जाहिर है, कठोरता तब होती है जब हम अपने जीवन के लिए अपने स्वयं के एजेंडे को पूरा करने, अपनी इच्छाओं को पूरा करने और ईश्वर की इच्छा से पहले अपनी इच्छा पूरी करने के लिए खुद को नए सिरे से प्रतिबद्ध करते हैं। लेखक चाहता है कि हम इस बात से पूरी तरह अवगत रहें कि यह हमारी आत्माओं के लिए एक बड़ा खतरा है और हमें सतर्क रहना चाहिए। सतर्क रहने की इस प्रक्रिया में वह हमें अपने साथी मसीहियों के महत्व की याद दिलाता है। यदि हमें परमेश्वर के वचन का जवाब देते रहना है और आध्यात्मिक कठोरता से बचना है, पाप धोखेबाज है। लेखक यह जानता है और धोखा खाने वाला व्यक्ति अक्सर उस धोखे से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सोच पाता। उसे ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो देख सकें कि वह व्यक्ति किस तरह आवेगों और तर्क के प्रभाव में आ गया है जो ईश्वर से नहीं है, और उसे खुद को उससे अलग करने में मदद करें। इसलिए लेखक हमें फिर से याद दिलाता है कि धर्म एक निजी मामला नहीं है, पश्चिमी समाजों द्वारा विशेष रूप से प्रचारित किए जाने के विपरीत। ईश्वर पर एक दूसरे का ध्यान केंद्रित करना और उसे बनाए रखना तथा निष्ठापूर्वक व्यवहार में दृढ़ रहना आवश्यक है। यह ईसाई बनने और ईसाई परिवार का हिस्सा बनने का एक हिस्सा है। लेखक हमें अभी और भविष्य में ईश्वर के समक्ष हमारी जवाबदेही की भी याद दिलाता है, जो अन्य सभी जवाबदेही से बढ़कर है, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। मैं यहाँ इब्रानियों 4:12-13 के पाठ का उल्लेख कर रहा हूँ, जो हमें याद दिलाता है कि हमारा अंतिम लेखा जोखा परमेश्वर के पास है, जिसके सामने कोई भी छिपा नहीं है, जिसके सामने सभी का गला खुला हुआ है। यह शब्द, जबकि वास्तव में एक खतरा पैदा करता है, विश्वासियों को मुक्ति का एक शब्द भी प्रदान करता है। जिस परमेश्वर को हमें लेखा देना है, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए पाठ अन्य मानकों के अनुसार काम करने वाले कई छोटे न्यायाधीशों से हमारी स्वतंत्रता की भी घोषणा करता है। यह माता पिता या धर्मनिरपेक्ष साथियों के मानक या अपेक्षाएं नहीं हैं। यह वह पूर्वाग्रह नहीं है जो हमें जन्म से सिखाया जाता है, और यह विज्ञापनों और शॉपिंग मॉल में प्रचारित जीवन स्तर नहीं है, बल्कि केवल ईश्वर के मूल्य और दृष्टि ही है जो हमारी निष्ठा का दावा करते हैं। अगर हम अपने विचारों, अपने कदमों और अपनी महत्वाकांक्षाओं को व्यवस्थित करने पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, ताकि हम उसे प्रसन्न कर सकें, जिसके साथ हमारा अंतिम लेखा जोखा है, तो हम भटकने के लिए कम इच्छुक होंगे।